सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सभी का वेद व्यास की महाभारत के छठे एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज इस एपिसोड में क्या खास होने वाला है। आज हम जानेंगे कि अब पांडव क्या करेंगे और क्या दुर्योधन के डर से वे हमेशा इसी तरह भागते रहेंगे या धर्म का पालन करने वाले पांडव दोबारा हस्तिनापुर लौटेंगे। कथा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे पांडवों ने वारणावत में एक साल व्यतीत किया। हर दिन पुरोचन का विश्वास जीतकर आखिरकार सभी पांडव भवन में आग लगाकर सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गए। लाक्षाग्रह की अग्नि में पुरोचन भी जलकर मर गया। लेकिन अभी पांडवों की विपत्ति का अंत नहीं हुआ था। अपने भाइयों और माता को उठाए हुए भीम सुरंग की दूसरी ओर आ पहुंचे। वहां उनकी सहायता करने के लिए विदुर के विश्वास पात्र पहले से ही उपस्थित थे। उस व्यक्ति ने एक ऐसी नाव का निर्माण किया था जो मन और वायु के समान वेग से चलने में समर्थ थी। उस नाव को चलाने के लिए एक यंत्र भी लगाया गया था। युधिष्ठिर को देखकर उस व्यक्ति ने कहा, युधिष्ठिर जी, विदुर जी की यह कही हुई बात आप सुनिए और निश्चित कर लीजिए कि मैं उन्हीं का विश्वास पात्र हूँ। घास फूस और सूखे वृक्षों के जंगल को जलाने वाली अग्नि विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जानवरों को नहीं जलाती है। इस तरह अपना परिचय देते हुए उस व्यक्ति ने युधिष्ठिर को वह नाव दिखाते हुए कहा, यह नाव आपको यहाँ से बहुत दूर ले जाएगी। आप इसमें सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन सभी के उदास चेहरे देखकर उसने दोबारा कहा, विदुर जी ने आप सभी भाइयों को गले लगाकर और ढेर सारा स्नेह देकर यह आशीर्वाद दिया है कि तुम शांत चित्त होकर कुशल पूर्वक अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। इस प्रकार उनका हौसला बढ़ाकर उस व्यक्ति ने सभी पांडवों को कुंती सहित नदी के दूसरे छोर पर उतार दिया। उन्हें छोड़कर नाविक वापस लौट गया। अब पांडव छुपते छुपाते जल्दी से वहां से जाने लगे ताकि कोई भी उन्हें पहचान न सके। अब मैं आपको ले चलती हूँ वारणावत के लाक्षाग्रह में, जहां अभी भी अग्नि धधक रही है। सभी लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय उन्होंने जाना कि सारा भवन लाख का बना हुआ था जो अब जलकर राख हो गया है। सभी लोग दुखी होकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, अवश्य यह दुष्ट दुर्योधन का ही कार्य है, उसी ने इस भवन का निर्माण कराया है। द्रोणाचार्य, भीष्म जी, कृपाचार्य, किसी ने भी उस दुष्ट को यह अधर्म करने से नहीं रोका। उस दुष्ट को यह समाचार भेज दो कि उसका षड्यंत्र सफल रहा। सभी क्रोध और शोक से भर गए। वे सभी पांडवों को ढूंढने का हर निश्चित प्रयास कर रहे थे। उसी समय उन्हें उस भिलनी और उसके पांच पुत्रों के शव मिले। सही समय देखते ही जिस व्यक्ति ने सुरंग बनाई थी उसी ने उस सुरंग को धूल से भर दिया। पांडवों की मृत्यु का समाचार पाकर राजा धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ। दुख में विलाप करते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, अहो, पांडवों और कुंती की मृत्यु का समाचार सुनकर ऐसा लग रहा है मानो मेरे भाई पांडु की मृत्यु आज हुई हो। सेवकों को आदेश देकर राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें वारणावत जाकर पांडवों और कुंती का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। पांडवों की आत्मा की शांति के लिए भीष्म और सभी लोग गंगा तट पर जा पहुंचे। उस समय सभी लोग अत्यंत शोक से भरकर विलाप कर रहे थे। कोई युधिष्ठिर को याद करके रोता, कोई भीम को, कोई अर्जुन, नकुल, सहदेव को याद करके रोता। पितामह भीष्म इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि पराक्रमी पांडवों की मृत्यु हो गई है। वे उन्हें और कुंती को याद करते विलाप करते हुए उन्हें जलांजलि देने लगे। पितामह भीष्म का हाल विदुर से देखा नहीं जा रहा था। इसी कारण उन्होंने पितामह को सत्य बताते हुए धृतराष्ट्र और दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में भी उन्हें सब बता दिया। दूसरी ओर पांडव दक्षिण की ओर आगे बढ़ रहे थे। इस प्रकार वे चलते चलते घने जंगल में जा पहुंचे। थके हारे भूखे प्यासे और नींद से लड़ते हुए पांडव अब चलने में भी समर्थ नहीं थे। सबकी ऐसी दशा देखकर भीम ने कहा, भला इससे बुरा और क्या हो सकता है कि हम बिना किसी लक्ष्य के दिशाहीन होकर यहाँ जंगलों में भटक रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि दुष्ट पुरोचन आग में जलकर मर गया या जीवित है। हम किस तरह ऐसे छुप छुपा कर जिएंगे? सब चलने में भी समर्थ नहीं है। भीम की ये बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, भीम तुम हम सभी में सबसे ज्यादा बलवान हो, तो तुम ही माता और भाइयों को लेकर शीघ्र आगे बढ़ना शुरू करो। भीम ने धर्मराज के ऐसा कहते ही माता और भाइयों को कंधे पर चढ़ाकर तेजी से चलना आरंभ कर दिया। भीम के वेग से पूरा जंगल ऐसे लहरा रहा था मानो वहां आंधी आई हो। जहां भी भीम का पैर पड़ता वहां की वनस्पति पृथ्वी से मिल जाती। ऐसा लग रहा था मानो कोई 60 वर्ष का तेजस्वी गजराज किसी कारण से कुपित होकर जंगल में आतंक फैला रहा हो और पूरे जंगल को तहस नहस कर रहा हो। शाम हो चली थी और सभी लोग वन के ऐसे भाग में जा पहुंचे थे जहां फल फूल और जल की बहुत कमी थी। वहां हिंसक पशु पक्षी थे, बिन मौसम भारी हवाएं चल रही थी, अंधकार धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। पेड़ों पर चढ़ी हुई बेल हवा से गिर रही थी। चारों ओर पक्षी अजीब स्वर में आवाज कर रहे थे। पांडव थक कर चूर हो गए थे। उनके लिए इस अवस्था में आगे जाना संभव नहीं था। उन सभी ने सलाह करके वहीं डेरा डालने का निश्चय किया। कुंती भी अब प्यास से व्याकुल हो गई थी। माता की ऐसी दशा देखकर भीम ने अपनी माता और सभी भाइयों को एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बिठाकर कहा, आप सभी लोग यहाँ बैठकर विश्राम करें, तब तक मैं सभी के लिए पानी लेकर आता हूँ। बड़े भाई युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर भीम पानी की खोज में निकल गए। सारस की आवाज का पीछा करते हुए भीम जलाशय के पास जा पहुंचे। वहां पानी पीकर स्नान करके भीम ने सभी के लिए चादर में पानी भर लिया। भीम जल्दी जल्दी अपने भाइयों के पास जा पहुंचे। वहां सभी को भूख प्यास और थकान से भरा और जमीन पर सोता देखकर भीम के मन को बहुत दुख पहुंचा। उनकी यह दशा देखकर भीम विलाप करने लगे, हाय मैं कितना भाग्यहीन हूँ कि अपने भाइयों और माता को इस प्रकार पृथ्वी पर सोता हुआ देख रहा हूँ। कल तक जिन्हें बहुमूल्य शैया पर भी नींद नहीं आती थी, आज वे इस प्रकार जंगलों में भटक रहे हैं। दुर्योधन को याद करके भीम के मन में क्रोध और बढ़ गया। वे सभी को हराने में सक्षम थे, लेकिन पांडवों ने हमेशा धर्म के अनुसार ही कार्य किया है, इसी कारण वे आज भी विवश थे। सभी को सोता देखकर भीम ने वहीं पहरा देने का निश्चय किया। जहां सभी पांडव कुंती सहित सोए थे, उस वन से थोड़ी ही दूर पर एक शाल वृक्ष का आश्रय लेकर हिडिंब नाम का एक राक्षस भी वहीं रहा करता था। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिडिंब राक्षस दिखता कैसा था। हिडिंब राक्षस बड़ा क्रूर और मनुष्यों को खाने वाला था। उसका बल और पराक्रम बहुत अधिक था। वह वर्षा के मेघ की भांति काला था। उसकी आंखें भूरे रंग की थी। उसके मुख से ही क्रूरता टपक रही थी। उसका मुंह बड़ी बड़ी दाढ़ी के कारण विकराल दिखाई देता था। वह भूख से पीड़ित था और मांस मिलने की आशा में बैठा था। उसकी दाढ़ी मूंछ और सिर के बाल लाल रंग के थे। उसका गला और कंधे वृक्ष के समान जान पड़ते थे। दोनों कान भाले के समान लंबे और नुकीले थे। वह देखने में बड़ा भयानक था। बेढोल रूप तथा भूरी आंखों वाला वह विशाल राक्षस देखने में बहुत डरावना था। भूख से व्याकुल होकर वह कच्चा मांस खाना चाहता था। उसने अचानक ही पांडवों को देख लिया। तब उंगलियों को ऊपर उठाकर सिर के रूखे बालों को खुजलाता और फटकारता हुआ वह विशाल मुंह वाला राक्षस पांडवों की ओर बार बार देखकर जम्भाई लेने लगा। मनुष्यों का मांस मिलने की संभावना से उसे बड़ा हर्ष हुआ। उस महाबली विशालकाय राक्षस ने मनुष्य की गंध पाकर अपनी बहन हिडिंबा से कहा,
बहुत दिनों के बाद ऐसा भोजन मिला है जो मुझे बहुत पसंद है। इस समय मेरी जीभ लार टपका रही है और बड़े सुख से लपलपा रही है। आज मैं अपनी आठों दाढ़ों को मनुष्यों के शरीर और चिकने मांस में डुबाऊंगा। मैं मनुष्यों की गर्दन पर चढ़कर उनकी नाड़ियों को काट दूंगा और उनका गरम गरम और ताजा खून खूब छक्कर पीऊंगा।
हिडिंबे ने अपनी बहन से कहा,
बहन जाओ पता लगाओ ये कौन है जो इस वन में आकर सो रहे हैं। मनुष्यों की तीव्र गंध आज मेरी नासिका को मानो बार बार अपने पास बुला रही है।
क्या यह राक्षस पांडवों के लिए एक और नई चुनौती है? आखिर अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।